संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन बिजरे हमारे। समय सार गाथा 328, 29, 30 और 31 चार गाथाओं का ग्रुप है। उत्थान का के कलश में कहा था कि जो बेचारे लोग वस्तु स्वभाव के इस नियम को नहीं जानते हैं, ऐसे वो अज्ञानी लोग अपने उस अज्ञान भाव के कर्ता होते हैं। परद्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी और न अज्ञानी कोई नहीं होता। फिर हमको ये लगता है कि परद्रव्य को करने का विकल्प रूप राग तो ज्ञानियों को भी होता है और अज्ञानियों को भी होता है। ज्ञानियों को भी रहता है, व्यवस्था बढ़िया हो, ऐसा करो, मैं ऐसा कर दूं, आप कहो तो मैं तैयार हूं, ऐसे सब बातें करते देखे जाते हैं, अज्ञानी भी करते देखे जाते हैं। और तुम दोनों की प्रवृत्ति में हम कोई ऐसा भेद करना भी हमसे संभव नहीं है। और तुम एक को कहते हो कि वे कर्ता है और दूसरे को कहते हो कि वे कर्ता नहीं है, ये हमें स्पष्ट अन्याय भाषित होता है। तब आचार्य देव कहते हैं कि देखो, परद्रव्य का कर्ता तो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। अब जो करने के भाव रूप जो परिणाम हैं, उन रूप दोनों परिणमित होते हैं। तो यह परिणमति सा कर्ता, इस नियम के अनुसार दोनों को ही कर्ता कहते हैं। लेकिन वो ये वो चारित्र वाला नियम है, इसलिए उसकी चर्चा अभी यहां नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं कि वो करने में करता हूं, ऐसा जो अज्ञान भाव है उसके कर्ता अज्ञानी हैं और ज्ञानी उसके कर्ता नहीं है। तो फिर लगता है फिर वो अन्याय के अन्याय तो हट गया, क्योंकि अज्ञानी के वो अज्ञान भाव है इसलिए वो उसके कर्ता है, और ज्ञानी के वो अज्ञान भाव है ही नहीं, विकल्प है लेकिन अज्ञान भाव नहीं है। इसलिए जब जो है ही नहीं उसके हम कर्ता कह रहे हैं कि वे कर्ता नहीं है, तो इसमें ऐसी कौन सी गजब की बात है, इसमें तुम्हें क्या अटपटापन लगता है ऐसा। इसमें एक माँ और बेटी जा रही थी, बुढ़ी अम्मा थी, जवान बेटी थी, रास्ते में तो उसके पास बोझा भी था गठरिया का, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वहां से एक घुड़सवार आया तो उन्होंने कहा, बेटा उसने कि ये मेरी गठरिया तू रख ले घोड़े पे, तो हम लोग चले जाएंगे और इस बच्ची को भी बैठा ले। अब मैं तो जिंदगी भर चली हूं लेकिन अब ये बच्ची नहीं चली है, तो फिर धीरे धीरे मैं तेरे साथ चलूंगी तो मुझे गांव तक पहुंचा देना। उन्होंने कहा, अरे अम्मा जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने सोचा, इतनी बढ़िया लड़की मिल रही है दहेज सहित, पुटरी अपने सारी संपत्ति उस पुटरिया में थी, तो पुटरिया भी मिल रही है और लड़की भी। तो कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, जमाई राजा। क्या नाम है? जमाई राजा। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम तो बहुत बढ़िया है बेटा। और उसने लड़की को बैठाया और पोटली ऊपर रखी, थोड़ी देर तो धीरे धीरे चला और फिर जोर का उसने लगाया और भाग गया। अब वो माँ चिल्लाए लोगों से, क्या क्यों 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 चिल्लाई कि जमाई राजा बेटी को ले गया। तो सब कहेंगे पागल हो गई है, जमाई राजा नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा, इसमें रोने की बात क्या है, तो खुशी की बात है कि जमाई राजा बेटी को ले गया, इसमें रोने की क्या बात है। ऐसे ही कह रहे भाई, गजब क्या हो गया, जिसके वो अज्ञान भाव है उसको हम कर्ता कह रहे, और जिसके वो अज्ञान भाव है ही नहीं उसको हम कर्ता कह ही नहीं रहे। तो यदि हम वो अज्ञान भाव होता और फिर कर्ता नहीं कहते हम, तो पक्षपात लगता है। लेकिन अब वो अंतर इस बात में नहीं कर पाता है, वो तो उस विकल्प को अज्ञान भाव समझता है। कौन सा विकल्प? करने का विकल्प। करने का विकल्प तो वो चारित्र का दोष है, वो करने संबंधी मान्यता, वो मिथ्यात्व का दोष है। अब इस बात का जो हम अंतर जब नहीं समझ पाएंगे, तो निरंतर हमको चौथे गुणस्थान की भूमिका को समझने समझाने में बहुत दिक्कत आएगी, हम नहीं समझ सकते। सबसे ज्यादा कठिन यदि कोई सब्जेक्ट है जैन दर्शन में, जैन अध्यात्म में, तो चौथे गुणस्थान की भूमिका को समझना है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण तो दिखता है कभी कभी बिल्कुल अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जैसा, जो बारीक बहुत बारीक अनंतानंदी के अभाव से अंतर होता है, वो बाहर नहीं झलकता है, बाहर जीवन में दिखाई नहीं देता है। और श्रद्धा होती है सिद्धों जैसी, कर्तृत्व का की मान्यता सिद्धों में के जैसे नहीं है पद्धति की, ऐसी ही सम्यक दृष्टि की भी नहीं है। और परद्रव्य के करने का विकल्प जैसा अज्ञानियों को आते हैं, उसी सीमा तक ज्ञानियों को भी आते हैं। क्या कह रहे उसी सीमा तक? देखो, किसी अज्ञानी भर मनुष्य को आज तक चक्रवर्ती से ज्यादा बड़ा आदमी बनने का विकल्प आया क्या मनुष्य गति में? नहीं आया। भक्त अज्ञानी को भी आता है। देखो आप समझिए ना, इतना अधिक परिग्रह जोड़ने का भाव ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है, कहां है ज्यादा? 96,000 शादियां करने का भाव ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है। तो भाव विकल्प की जो उत्पत्ति है, जिनके आधार पर हम निर्णय करें, क्रिया भी ऐसी देखने में आती है दोनों की, वे भी उसी तरीके मजबूती से लड़ते हैं, एक दूसरे पर कसर नहीं छोड़ते हैं। दो समय दृष्टि भी लड़े, दो भाई भाई लड़े, भाई भाई में क्या दम है? साधर्मी भाई लड़े तो कोई चिंता की बात होती है, भाई भाई तो लड़ने को ही पैदा हुए हैं, उनके तो जन्म में ये नींव में पड़ा है। क्यों? माँ बाप इकट्ठे, संपत्ति इकट्ठी, मकान इकट्ठा, एक रूमाल घर में है तो वो दोनों के बाप का, अब उसे आधा फाड़ फाड़ के ले, तो ये तो लड़ने को ही पैदा हुए हैं, उन्हें तो लड़ना ही है। किनारे नारे हो गए भाई भाई में, कौन सा गजब हो गया है? अनादिकाल से आज तक भाई भाई न्यारे होते आए हैं, समझा ही ना, और न्यारे हुए भाई कभी एक होते हुए नहीं है। अभी हमको चिंता तो इस बात की होना चाहिए कि पति पत्नी न्यारे न्यारे होने लग गए, ये नहीं हो। जो असली जुड़वा भाई हैं वे न्यारे न्यारे हों, वो कोई गजब की बात नहीं है। लेकिन जो नकली बने हैं ना, पंचों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, कस्में खा खा के, शर्तें लगा लगा के, तय कर करके जो बने हैं, क्यों? अब ये अलग होने लग गए हैं, चिंता का विषय तो ये है। क्यों? जो हम कहते हैं कि अभी डाउनफॉल आया है, डाउनफॉल तो ये है। क्यों? आपका ऐसा पता लग रहा होगा मेरी बात, सच्ची बात है ये। उनका तो वो भाई भाई का जो कुछ होगा पुराना, एक साथ माँ बाप एक साथ हैं, सब हैं, बहनें एक साथ हैं, वो इकट्ठा, अब आगे तो इकट्ठा एक नहीं है साझे का, ये पति पत्नी का तो आगे मान साझे का होने वाला है, बाल बच्चे भी साझे के होने वाले हैं, भाई भाई के बाल बच्चे तो साझे के नहीं होंगे, तो भविष्य का झगड़ा वहां तो खत्म है, और यहां भविष्य का झगड़ा चालू है। किसकी चिंता करना? बोलो, भविष्य की करना क्या अभी की है? तो ये जो फर्क है दोनों में, आपका अनंतानंदी कसाय का इतना बड़ा फर्क है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अनंतानंदी कसाय की जो प्रवृत्ति क्रिया में और भावों में देखने में आए, وہ انت انتانوندی کسائے والوں کے نہیں دکھائی دیتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدھ کے دکھائی دیتی ہے، جیسے رامن کی دکھی تھوڑی سی کہ اس نے پرناری پر ہاتھ ڈالا، آگے کچھ کیا، لیکن باقی کے یہ سارے متھا دشٹی سجن دھرماتما ہی بنے ہیں کہ گورنمنٹ کے ڈر سے، کوئی سماج کے ڈر سے، کوئی اور کبھی میں کی دوسرے کی ایک آنکھ پھوڑوں گا تو میری دونوں بچنے دے گا کیا؟ ان بھے سے جو انتانوندی کے کسائے کے ہدے میں جو مہا پاپ ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہو پاتے ہیں، ان کے کیوں ہو گئے؟ چکرورتیوں کے کیوں ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ؟ انتانوندی نہیں ہے تو بھی کسی کا ڈر نہیں ہے. اب سوچو کہ رامن ایک سیتا جی کو ہر کے لے آیا اور اپنے گھر میں رکھا اور نوکر چاکروں کو آرڈر دے دیا ساری سیوا کرنا ان کی، کوئی ایک چیز نہیں بول سکا. اور اب کوئی لے آ کے دیکھو تم، اپنے گھر میں رکھ کے بتا دو، کوئی مائی لگ کے لال میں ہمت ہو اتنی تو ہاتھ اٹھا لیں کہ کسی پرائی مہلا کو زبردستی اٹھا کے لے آئے اور اپنے گھر میں رکھ لے. کیوں؟ اور سب کو آرڈر دے دے گا اس کی سب سے بڑھیا کیسے ویوستھا رکھنا ہے. تو انتان بندی کے سارے کے جو کام ہیں وہ کہاں دیکھنے میں آ سکتے؟ سماج کے ڈر سے، راج کے ڈر سے ہم سب سجنوتم بنے ہوئے ہیں. دھرم کے درشن کتاب میں نے لکھا ہے، آشرم دھرم میں، آرجب دھرم میں، کہ ہمارے من میں جتنی گندگی ہے وہ گندگی یدی بھاسا میں آ جائے تو جگت میں کولاہل مچ جائے، اور جیون میں آ جائے تو پرلے ہو جائے. ایک ایک کے من میں اتنی ادھک گندگی ہے. میں نے اس میں ایسا لکھا ہے، ایسی کون ماں بہن ہے کروپ سے کروپ، سندر نہیں، کہ جسے دیکھ کر کسی نہ کسی نالائق کے ہردے میں اس کے لکھ سے کھوٹا بھاو نہیں آیا ہو. وہ ایک نہیں ملے گی. اور یدی وہ اس کا بھاو بانی میں آ جاتا اور کریا میں آ جاتا تو کس ماں بہن کی عزت سرک سکتی؟ بتاؤ. اور دوسرا، ایسا کون اجات شترو ہے اس جگت میں کہ جسے مارنے کا بھاو کسی نہ کسی کو آج تک نہیں آیا ہوگا، نہ صحیح مارنے کا، یہ تو آئی ہوگا کہ مر جائے تو اچھا ہے، کن تک کٹے. کیوں؟ تو اس کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے. یعنی ان کا بھاو بانی میں آ جاتا اور کریا میں آ جاتا تو کون زندہ بچتا؟ بتاؤ. یعنی من میں کتنا انت گنا پاپ ہے اور اتنا بانی میں نہیں ہے اور کریا میں بھی نہیں ہے، اور وہ شکتی شالیوں کے ہو سکتا ہے، اور سرد شکتی شالی تو ایک آدھا ہی ہوگا نا، جب چکرورتی سیکنڈ میں ایک ہی تو ہوگا، اندروں میں ہیں تو اتنے لاکھوں کروڑوں جو دیو ہیں ان میں ایک ہی تو اندر ہوگا نا، شکتی شالی تو ایک ہی ہوتا ہے نا، باقی تو سب مطلب کسی نہ کسی کا بھے ان کے اندر ودیمان رہتا ہے، تو ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا، اس لیے نہیں آتا ہے. اس لیے جو انتان بندی کا پاپ کا کاریہ جنتا کی سمجھ میں آنا چاہیے وہ ہمارے جیون میں نہیں دکھائی دیتا. اس لیے اجانی کا جیون اور جانی کے جیون میں باہر سے سوچے گنستان والے کے کوئی زیادہ انتر دکھائی نہیں دیتا ہے. ہمیں تو بہت دیکھنا ہے، ہمیں تو ایک دم زمین آسمان کا انتر دیکھنا ہے. اور انتر دشٹی ہے نہیں، انتر کو دیکھنے کی شکتی ہے نہیں پرگٹ پر جانے، اور انتر بہت دیکھنا ہے تو سات تکیوں میں دیکھتے ہیں. تھوڑا مسکرا دیا تو گیا.
یعنی باہر کی درس کی پربتیوں میں جیسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ نکلی سمبند اسی کھڑے ہوتے ہیں نا. ایک ایک بات میں پکڑ رہی, یہ کوئی لکشن نہیں ہے. یہ سمبند اصل کے لکشن ہیں ہی نہیں, بلکہ یہ تو کلکشن ہیں. کیونکہ وہ ہے نہیں اور زبردستی لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں سمبند اسی دھرم آتما ہوں. میں شاید ایک دفعہ یہاں بتایا تھا, بہت سمے پہلے کی بات ہے. ادھر کوٹا کے پاس میں ایک گاؤں ہے, جے تھل کر کے جے تھل کروشت رہا ہوگا کبھی, کوئی راجا وہاں جیتا ہوگا تو اس گاؤں کا نام پڑ گیا جے استھل, اور جے استھل سے جے تھل. تو وہاں ایک بھائی رہتے دھرم چند جی کر کے ہیں, ابھی بھی ہوں گے. تو ان کو اس تک ودھان کرانے کا بھاو آیا اور مجھے یوگل جی کو بابو بھائی کو سب کو لے جانے کا بھاو آیا. تو انہیں بھوک محنت کر کر کے سب کو اکٹھا کیا اور وہ بہت بھدر پرکرتی کے ہیں, تو اس وجہ سے سب لوگوں نے انہیں منظوری بھی دی اور ہم سب لوگ پہنچے ہوں. وہاں ایک بہن کے بارے میں بہت پرسدھ تھا کہ وہ سمے درشن ہو گیا ہے. کیا اور یہ بھی پرسدھ تھا کہ اس کے سمے درشن کی پریکشا یوگل جی نے کر لی ہے اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ تم سمجھ لیتی ہے. اور ہم سب تینوں وہاں موجود تھے, وہ بہن بھی آئی, اس کا پتی بھی آیا. اب وہ سب بیٹھے, وہ چاہتی تھی کہ ہم سب لوگ بیٹھے اور وہ پتنی سب باپ ہو گئے اور اس کو وہ میرے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے. تو اس کا پتی برابر بول رہا تھا, وہ تو گھونگھٹ میں تھی سمجھے نا. تو وہ تو بالکل اتنا لمبا گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی, پر پتی بولا میری پتنی کو تو جب سے سمے درشن ہوا ہے تب سے ساری گرستی گڑبڑا گئی ہے. وہ تو لوٹا لے کے لیٹن باہر جانا پڑتا تھا, اس زمانے کی بات ہے. کم سے کم 45 برس ہوئے ہوں گے, 45 میں تو 40 سے تو کم ہوئے نہیں, جو گھٹنا بتا رہا ہوں ابھی. تو وہ جاتی ہے پر ایک دم آتما میں چلی جاتی ہے تو ہاتھ میں سے لوٹا گر جاتا ہے. چولہے پہ روٹی جل جاتی ہے, اوپر وہ رکھ دیتی ہے اور پھر بس اندر میں چلی جاتی ہے تو جل جاتی ہے. ایسے ایسے بہت بہت مہیما وہ سمے درشن کی بتا رہا تھا, اور بیگل جی میں اور بابو بھائی سب سن رہے تھے, اور 10-20 آدمی مموکشو تھے جو اس وقت کے پرسدھ پرسدھ مموکشو تھے, جواہر لال جی ودیا والے جو بھی تھے, وہ سب لوگ تھے, بہت لوگ تھے. بس کوئی کچھ نہیں بولا, سناٹا ٹھہرا, وہ بولے جائے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں, تو ایسا کرو تم کوئی نیورولوجسٹ کو دکھاؤ. کیا نیورولوجسٹ کو دکھاؤ؟ نیورولوجسٹ سمجھتے ہو نسوں کی ڈاکٹر, نسوں کا ڈاکٹر, کہ کچھ نسوں میں گڑبڑ ہوئی ہے, اس سے جو ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ لوٹا گر جاتا ہے. سمے درشن سے تو لوٹا گرتی نہیں ہے, سمے درشن سے تو چکرورتی کا کتنا ویوستھت جیون ہوتا ہے. تو ایک چکر چل آئے کوئی ہتھیار تو کبھی چوکتا نہیں ہے اس کا نشانہ, کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. آج تک کسی سمے دشٹی کو کہ ہاتھ سے لوٹا گرے ہوں ایسا کہیں کسی شاستر میں نہیں آتا. دو جنے جنے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا یہ جی بک بک کر رہا ہے, یہ تو دونوں بیٹھے ہیں شانتی سے. اب یہ تو سجنوتم لوگ تھے نا. باتیں یہ لکشن نہیں ہے سمے درشن کے, ایسا نہیں ہوتا جو تم بتا رہے ہو. روٹی جل جا, ایک روٹی نہیں جلتی ہے سمے درشنی مہیلاؤں کی. اس کا جیون تو اویوستھت جیون تو متھیا درشٹیوں کا ہوتا ہے, سمے درشٹیوں کا جیون تو بہت ویوستھت ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے یہ بات نہیں ہے. تو وہ مہیلا گھونگٹ میں سے بولی کہ کیوں صاحب, ایک پرشن ہے کہ کوئی متھیا درشٹی سمے درشٹی کو پہچان سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی کیا کہہ رہی تھی وہ, کہ تم متھیا درشٹی لوگ مجھے نہیں پہچان پا رہے ہو تو میں کیا کروں. کیا मैंने कहा बाबू भाई बोलो, योगी साहब जवाब दो क्या कह रही है। आप बोलो जवाब दो। मैंने कहा बहन मैं तो कोई बोलने वाला कहां थे, सज्जन तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैंने कहा बहन एक प्रश्न मेरा भी है कि किसी समय दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्यों सर्टिफिकेट लेने आई हमारे पास। प्रवल जी आपने हमने सुना सर्टिफिकेट दिया है, उसके सामने ही कहा। बोलो क्या क्या देखा आपने, आप बताओ हमें। प्रवल जी बोले मैंने कुछ नहीं कहा, इस बहन ने आकर के कहा ऐसा है ऐसा 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 सब बता कर बताया मुझे। तो मैंने तो ये कहा था कि बहन जैसे तुम विकल्प बता रही हो ऐसे विकल्प ज्ञानियों के तो होते नहीं है, फिर भी तुम कहती हो कि मुझे सम्मा दर्शन हो गया है तो ठीक है हो गया होगा, लेकिन मैं सबसे बड़ा मैं अपने वो अधिकारी समझता हूं कि तुम किसी को सम्मा दर्शन हो गया हो तो सबसे पहले बधाई मैं दूं। तुम्हें हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है ही, कोई किसी को कोई कैंसर तो हुआ नहीं है, है? लेकिन ये तो तुम्हारे विकल्प हैं, ये सम्मत दृष्टि की भूमिका जैसे नहीं है। ये कहा था कि मैंने स्पष्ट उसके सामने ही कहा, अब इतना जरूर कह दिया हो गया है तो ठीक है भाई, उसमें से हो गया सर्टिफिकेट हो गया और सारे देश में हल्ला गुल्ला हो गया। वो दिन है कि आज दिन बहुत दिनों तक वो महिला मुझे 20 वर्ष तक दिखी नहीं थी, गधे के सिर के सिंह जैसी गायब हुई है। फिर एक दफे हमारा इंदौर में शिविर था, वो शांतिनाथ धर्मशाला है ना, क्या नाम मांगलिक भवन दीदवालिया में, उसमें था, उसमें आई वो महिला। तो फिर उसने तब चर्चा करी, बोले पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कभी नहीं नहीं मैंने कभी ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं वो ही हूं। अच्छा अच्छा मैं ठीक, सर मुझे पता नहीं कल क्या कैसी रही। तो ऐसा ही कुछ है, अभी हमको इतना पता नहीं है, आधे से ज्यादा समय दृष्टियों को जो अपने को घोषित करते हैं मानते हैं कि उस समय दृष्टि के विकल्प कैसे होते हैं, भूमिका में भाव कैसे होते हैं, कौन सी नीति सीमा तक भाव पाप भाव भी किस सीमा तक हो सकते हैं और पुण्य भाव किस सीमा तक हो सकते हैं, कर्तृत्व का विकल्प किस सीमा तक हो सकता है, ये सब किसी को पता नहीं है। और उसी वजह से वो मेरा भाव बना था कि मैं एक ऐसी कोई कहानी लिखूं, एक उपन्यास लिखने का भाव बना था कि जिसमें सम्यक दृष्टि का जीवन के हर एंगल का लास्ट पॉइंट तक वो पहुंचाऊं, ख्याल नहीं ना। देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा नमूना तो आपको अंदाजा लगेगा कि मेरे विद्यार्थी बैठे हैं ना, भविष्य में एक कोई लिख देगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा तो है? दो भूतवती पुरुषग्रंथ हुए थे, उनने इतने शास्त्र बना दिए थे, ये तो शास्त्र से ज्यादा हो गए, कोई ना कोई बना देगा। देखो पवन जय अंजना को देखकर बेहोश हो गए, इतनी तीव्र मतलब समझ लो कि महिला पर मोहित हो जाना, तो उस वक्त सम्मय दृष्टि थे कि नहीं थी, यदि हो तो क्या दिक्कत है और नहीं हो तो क्या दिक्कत है। उनके सम्मय दर्शन की निशानी कोई उस वक्त उनके पास थी कि नहीं थी, कैसे जाने के जो सम्मय दृष्टि है। आज कोई आय का कोई सम्मय दृष्टि ऐसा बेहोश हो जाए किसी को देख के, और फिर वो कहेगा रोटी बाद में और खाना पहले शादी मेरी इसके करूंगा, तो उसे आप सम्मय दृष्टि मानोगे। बोलो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि नहीं मानोगे ना, तो फिर आप अपने जय को भी घोषित कर दो मिथ्या दृष्टि, कर ही दिया और क्या, कैसे किया जाता है। जब आप मानने को तैयार नहीं हो तो कर ही दिया ना, लेकिन मैं कहता हूं नहीं सम्मय दृष्टि थे। महेंद्र कुमार जी कैसे, जब वो उन्हें छेटा डाले उनके मां बाप ने, और जब उन्हें होश आया तो होश में आते ही ऐसा कहा کہ میں تو شادی کروں گا تو انجنا سے ہو کسی سے کروں گا نہیں، کھانا بعد میں پہلے شادی، بس یہ سمت درشن کی نشانی. اس میں سمت درشن کا رشتہ ہو گیا، کیوں اس نے کہا کہ شادی کروں گا تو اس سے. یعنی ان کو یہ کہا جاتا کہ وہ لڑکی جس کو دیکھ کر کے تم موہت ہوئے ہو اس کی تو شادی ہو گئی ہے، تو ایک سیکنڈ میں وکلپ ان کا ٹوٹ جاتا، میں بات نہیں کرتے شادی کی. یعنی یہ کہہ دیتے کہ اس کی سگائی ہو گئی ہے تو ابھی ایک سیکنڈ میں وکلپ ٹوٹ جاتا، کیونکہ انیائے کا بھوگ نہیں ہوتا ہے سمنا دشتی کے، اور پرستری کا جو وکلپ ہے وہ انیائے کا وکلپ ہے. کماری کنیا کے سندر میں وکلپ آنا یہ انیائے کا نہیں ہے. کسی بھی آدمی کوئی نہ کسی پہ پریم ہوگا، موہت ہوگا، اسے شادی کرے گا، یہ مریادا کے بھیتر، مریادا کے باہر کا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا فرق ہے؟ اب ایک دوسری دیکھیے کہ صاحب یہ لڑکی کس کی ہے، یہ مندر میں آئی ہے، کہ یہ لڑکا کس کا ہے، بہت ہوشیار ہے، اچھا بولتا ہے، کہ صاحب یہ فلاں شیٹ جی کا لڑکا ہے. اچھا آپ کہ نہیں نہیں مجھے ذرا ان کا ایڈریس دے دو، پتہ بتا دو. کیوں کیوں کیا کرنا، کیا کام ہے آپ کو؟ کہ میری پوتی ہے. سننا ذرا، میں لڑکی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، پوتی، جس میں کہ اس کی گمبھیرتا بنی رہے ادھارن میں. میں بہن بھی کہہ سکتا تھا، لیکن پوتی ہے میری، اور میں اس کے ساتھ، اس کے لڑکے کے ساتھ اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے بتاؤ کہ صاحب اس کی تو سگائی ہو گئی پرسوں ہی، وہ ہوا ہے کیا، کچھ کرتے ہیں کیا، ہوتا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. تو ایک سیکنڈ میں اس کا وکلپ ٹوٹ جانا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ ہو گئی ہوگی، تم تو مجھے کنڈلی لا دو اس کی. کہ صاحب ہو گئی سگائی، تاریخ شادی کی نکی ہو گئی، فلاں تاریخ کو شادی ہوگی، اب تم اس کی کنڈلی لے کے کیا کرو گے؟ کہ تمہیں کیا کرنا، ہو گئی ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے، کتنا دے رہا ہے وہ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ؟ میں 10 کروڑ دوں گا. ارے سب ہوئی ہوئی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ تم سگائی کرے پھیرے پڑ جاتے تو بھی ٹوٹ جاتی ہے، تم کو کیا کرنا ہے، سمجھے نا. یہ شادی تو اس سے میرے لڑکی کی ہوگی ہر قیمت پہ، بس تم تو مجھے بتا دو. اب یہ متھیا دشٹی ہے بابو چاچا. کیوں؟ کہ اسے پرستی کا بھاو آ رہا ہے، اپنے لیے نہیں، پوتے کے لیے، تو بھی وہ متھیا دشٹی ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ انیائے، انیتی اور ابھکش، تین چیزیں سمنا دشٹی کے نہیں ہوتی ہیں. وہ تین چیزیں اس میں کھودو، آپ جانتے، آپ خود ہی نہیں جانتے کہ انیائے کیا ہے، انیتی کیا ہے، ابھکش کیا ہے. یہ انیائے کا بھوگ ہے کیا؟ کہ دوسرے کی سگائی توڑوا دینا، دوسرے کی شادی توڑوا دینا، یہ کروا دینا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ سب انیائے کا بھوگ ہے. اس کا جیون انیتک نہیں ہوتا، اس کا جیون انیائے میں نہیں ہوتا، اور اس کے جیون میں ابھکش بخشن نہیں ہوتا. تین چیزیں یعنی اس کے جیون میں ہیں تو وہ گارنٹی سے سمیہ دشٹی نہیں ہے. اب انیائے کا بھوگ کا ارتھ سمجھ میں آئے نا؟ ایسا میں پانچوں پاپوں پہ، ہنسا، جھوٹ، چوری، ایسے ادھارن گڑ گڑ کے اس میں سے اس کہانی میں ڈالتا کیا سب میں ایک ہنسا نام کا پاپ، بھبچار نام کا پاپ، کیا کس سیما تک وکلپ آ سکتا ہے، اور کس سیما تک اس میں انیائے کیا ہے اور انیتی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں انیائے اور انیتی میں کیا فرق ہے؟ جو راج ورودھ کام ہوتا ہے وہ انیائے ہے، اور جو سماج ورودھ ہوتا ہے اس کا نام انیتی ہے. سمیہ دشٹی انوتی نہ تو وہ راج ورودھ کام میں جاتا ہے اور نہ وہ سماج ورودھ کام میں جاتا ہے. اب آپ کہو گے یہ کیسے نہیں دیتی ہمیں، پھر تو مہاتما گاندھی، فلانے گاندھی، فلانے 3500 ادھارن دے دو گے آپ کو، तो सावधान है ना, हाँ है ना, तो सब समय दृष्टि थे ना, जब समय दृष्टि नहीं थे तो काय को कोई उदाहरण हमारे सामने लाते हो? क्यों कि राज विरुद्ध कार्य करेगा तो राजा जेल में डाल देगा, जेल में डाल देगा तो वहां पर भक्ष खाना मिलेगा, भक्ष खाना मिलेगा, क्यों? फिर तुम जेल का खाना खाना पड़ेगा ना, तो वहां छने पानी का बनेगा, वो मर्यादाओं का बनेगा। तो जब वो ऐसा खाना ही नहीं खाता है तो वो ऐसा काम क्यों करेगा जिसे जेल में जाना पड़ेगा? वो जेल में डालने की ताकत तो राजा की है, समाज की तो है नहीं, समाज चाहता तो बड़ा दंड दे तो हमें जेल में तो डाल नहीं सकती। तो आप समझ गए, क्योंकि राज विरुद्ध साहब, राज विरुद्ध राजा ने अन्याय किया हो तो, अरे कुछ सवाल इसका है कि उसके जो परिस्थिति उत्पन्न होगी महेंद्र कुमार जी, वो परिस्थिति में हमारा धर्म निभेगा कि नहीं? हम शांति से अपना जीवन शुद्ध अन्याय अनिति और अभक्ष से रहित और अपना शुद्ध अध्ययन मनन चिंतन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? यदि उसमें डिस्टर्बेंस आता है, आएगा, तो ऐसा काम हमें किसी कीमत पे नहीं करना। और समाज विरुद्ध क्यों? अनैतिक। तो आप कहो कैसे, भी मैं पूछता हूं, मामा की लड़की से शादी करना नैतिक है कि अनैतिक, बोलो है ना? अब अपने हाथ विकल्प विकल्प आवे मन में तो महा अनैतिक है कि नहीं? वो तो अपनी सगी बहन ही है क्या नहीं है? और महाराष्ट्र में जाओ तो मामा नहीं देगा लड़की तो और कौन देगा? सबसे पहले मामा की लड़की की बात है वहां। अब देखो महाराष्ट्र में के जैनियों में वो अनैतिक नहीं है और उत्तर भारत के जैनियों में अनैतिक है। तो उसने कहा ना, मामा की लड़की से शादी करना कौन से हिसाब से नापे? समाज का जो जहां जैसी मर्यादा है, अब उम्र और अब तो मामा की लड़की है और सगी भांजी, ये भांजी तो हमारे उत्तर भारत में जैसे जैसे भगवान ही हो, इतना महापवित्र मानते हैं, अपनी लड़की से भी ज्यादा है क्या नहीं? उसके विरुद्ध मन में विकल्प भी खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है हरेक उत्तर भारतीय को कि मैं साथ में नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे, है नहीं? और वहां मां भांजी से भी शादी होती, मामा की भांजी से भी होती है, बोलो। और भाई जेनी और भैया, अब वहां का होगा कोल्हापुर सोलापुर का तो वो नैतिक है, और हमारे यहां जयपुर का होगा तो महा अनैतिक है। अब आपके बाद में ये ख्याल थी, उन संबंधित से पूछा उन्हें पता है, और अभक्ष जिसमें अनंत जीवों का हाथ हो, अपने हैं पांच प्रकार के अभक्ष गिनाए ना, तृतघात बहुघात है, और उसमें एक दो बहुत ऐसे अभक्ष हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं है। एक तो अनुपसेव्य, अनुपसेव्य किन्हें कहते हैं? कि वो उसमें कोई दोष नहीं हो लेकिन समाज में निंदनीय हो, बिल्कुल हिंसा नहीं, कुछ भी नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं, क्या अपनी पेशाब पी ना, अब अपनी है बिल्कुल एंटीबायोटिक से बराबर उसे होके आई है थनथना करके, किडनी ने छान के सब भेजा है, उसमें उसको दोष क्या, कौन की हिंसा है, किसकी क्या हो रही, हम किसी दूसरे की थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन लोग निंद है कि नहीं है? बोलिए आप, नहीं समझते। और अब एक और है इससे भी खतरनाक, अनिष्ट। देखो घी अठपहरा घी, बिल्कुल गाय का घर पे गाय को नहाया, फिर उसको शुद्ध खालाया, फिर उसका दूध निकाला, फिर उसका आठ पहर के भीतर घी निकाल लिया, वो घी भी यदि जिसको हार्ट का है डॉक्टर ने मना किया है कि घी तेल बिल्कुल बंद, वो घी भी खाए तो वो अभक्ष है उसके लिए, बोलो। अब उसमें जीव है इसलिए नहीं, अनिष्ट नाम का अभक्ष है, ब्लड प्रेशर वाला नमक खाए डॉक्टर मना करे और वो खाए, हैं शुगर जिसको है वो शक्कर खाए, अब मैं तो एक दफा खा लेता हूं एक इंजेक्शन और ज्यादा लगाऊंगा, कोई ऐसे लोग बड़े बहुत महान संत होते हैं भैया, एक दिन मरना तो सबको ही है, अरे मूर्ख तेरे को उसको खाना है, अपने विषय भोग का पोषण, ये जो महान अनंत भावना है, इतना उत्कृष्ट जो हमारी वो कहते हैं हम उनके उन शब्दों का प्रयोग करता है। एक दिन मरना तो सबको ही है, तो अपने खाने का मजा क्यों छोड़ें? बोलो, मैं बोलता हूं साथी पे हाथ धर के बताओ, उन संबंधियों से जाके पूछना कि जो चीज उन्हें डॉक्टर वैद्य ने मना की है फिर वो उसे नहीं खाते हैं, ऐसे हैं? एक भी बता देना मेरे को। अच्छा, अब और दो और बारीकी में जाओ थोड़ी, कि उनने कहा कि तुम 50 ग्राम के 10 ग्राम घी ले सकते हो रोजीना, तो 10 ग्राम तक वो अभक्ष है और 11वां ग्राम समझे ना, 11वां ग्राम लो तो अभक्ष है और 10 तक भक्ष है। वो घी कैसा है उसको कुछ नहीं लेना देना। क्यों? इस पर तो मेरा बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ था जब मैं टोडा मल स्मारक भवन में आया और मैंने बालबोध पाठमालाएं लिखी, और बालबोध पाठमाला में अभक्ष का पाठ कौन सी पाठमाला में है? तीसरी में है ना। तो अभक्ष का मैंने लिखा, तो वो 5 प्रकार के अभक्ष गिनाए, अभक्ष गिनाए तो राम जी भाई बहस करने लग गए, ये नहीं हो सकता है। मैंने समझाया, पूरा भाषण दिया सबके सामने, कहीं अनिष्ट अभक्ष है, शास्त्र में है सब बात, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कटवा दिया साहब। अपनी किताब में शुरू की किताब देखना, अपनी लाइब्रेरी में होगी वो, मैंने रखवाई थी, 4 अभक्ष लिखे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी क्या हैसियत थी उस वक्त, कब की बात है ये मालूम? कौन से सन की बात है? सन 69-70 की। 69-70 में कितने वर्ष पहले हो गए आज के? 43 साल हो गए ना। 43 साल पहले की बात है, और मैं 43 साल की मैंने क्या हैसियत थी मेरी? काट दो ये, काट दिया। पन्ना लाल साहब कहता है झंडा खड़ा कर लिया, ये साहब देखो इन्होंने एक अभक्ष निकाल दिया, एक अभक्ष निकाल दिया, एक अभक्ष निकाल दिया। शास्त्र में, अखबारों में, जैन संदेश में लेख आ गए चारों तरफ से, और फिर वो गए, फिर सोनगढ़ में भी पड़े गए गुरुदेव के सामने बैठ करके। मैंने कहा कि भी बात तो अभी क्या है, मैं क्या कहना, साहब जवाब में क्या जवाब दूं, मैं तो ये कहता हूं कि डालो इसमें, देखो 5 रुपये हैं अभक्ष। फिर वो 5 अभक्ष उसमें डाले गए, अब आज की किताब में 5 अभक्ष हैं। ये बातें किसी को आपको पता चलेंगी? क्यों संत जी, आपको पता थी? कितने साल हो गए मेरे साथ रहते? नहीं है पता, ऐसे थोड़ी तो मौका कभी आता विकल्प आता तो बताते हैं, हरेक को थोड़ी बताते हैं। लेकिन साहब ये तो अच्छी नहीं है, तो अपनी प्राइवेट बातें हैं खोलने की। अरे प्राइवेट नहीं है, अनिष्ट नाम का जो अभक्ष है वो सबकी समझ में आए और गुरुदेव के सामने बहस हो करके फिर उसे मान्य करके लिखा गया है, तो सारे मोक्षों की समझ में आए तो ये मानेंगे, नहीं नहीं मानेंगे ये मोक्ष। क्या कमल, क्या क्या है अभक्ष की मर्यादा? इस तरह से कौन अभक्ष मर्यादा मैं उनका कालन पालन नहीं करता? जरा सा क्या होता है? वो जरा सा की परमिशन है? यदि जरा से की परमिशन नहीं है तो ऐसा नहीं। यदि 2 ग्राम की परमिशन है तो 2 ग्राम भक्ष है, 30 ग्राम अभक्ष है। अकेला ये नहीं है कि वो डॉक्टर की बात आज्ञा का उल्लंघन हो रहा हो, तुम बीमार होकर मर जाओगे, मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सवाल ये है कि आपने जरा सी लोलुपता के पीछे अपने अभक्ष की जो नहीं खाने की मर्यादा का भंग किया, तो सम्य दर्शन तो है ही नहीं, और सम्य दर्शन होने के चांस भी नहीं है, क्योंकि आप आज्ञा को नहीं मान रहे। कहो हम तो खुद क्या देखोगे तुम? सर्वज्ञ की वाणी में लाया है, सर्वशास्त्र में देखो, उसमें क्या देखोगे तुम? आलू में अनंत जीव है, तुम कहां देखोगे? जनवाणी में देखना पड़ेंगे, बिना किसी मीन में किए मानना पड़ेंगे, और जीवन अपना ऐसा बनाना पड़ेगा। बोलो सब बना लो, तैयार हो इसको। ये सब माताएं बहने हैं ना, फिर खुद नहाने वाली, गाय भैंस को नहाने वाली, खूब शोध का भोजन करने वाली, ये इस तरह के अभक्ष का त्याग किए हैं। क्यों? इनके जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल पड़ता है, वैद्य डॉक्टर मना करते हैं, सासू जी मना करती हैं, बहू जी मना करती हैं, और फिर भी ये मुझे नहीं खाती है। हमारे एक रिश्तेदार ही थे, नाम नहीं बताऊंगा, अब तो है नहीं, तो अमरूद से एलर्जी थी। अमरूद समझते ना, जामफल क्या बोलते थे लोग, तो उसको वो खाते थे तो सारा शरीर फूल जाता था, इतनी एलर्जी चकते चकते हो जाते तेरे जैसे हो जाते थे। और लेकिन मैं तो साल में एक दफे तो मैं खाऊंगा था जो कुछ हो जाए, और एक दफे में खा करके और 10 दिन तक पड़े रहते थे हर साल मौसम में। तो इतने त्यागी थे, अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितने कितने मर्यादाएं थी। ये नहीं खाना, इतने 25 साल से ये नहीं खाया, 50 साल से ये नहीं खाया, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, कितने। और हमको महाभ्रष्ट मानते थे, कहते थे हमसे बुजुर्ग थे ना, बड़े थे, रिश्ते में भी बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, क्या है? भाई मैं कहता था उनसे कि ये आप क्या समझ रहे हो, व्यावक्ष के त्यागी हो आप है? अभी मैं किसी का नहीं, अभी हरेक का अपना अपना देख लेना चुपचाप अपने घर में, और किसी को कहना नहीं है ना। और फिर अपने मन में ही समझ लेना, कहने में कि हमारी तुम्हारी सबकी इज्जत जाती है, इज्जत अपनी बचा के रखना। ऐसा है अंडा पेशाब करे, दुनिया देखे वो समझता कोई नहीं देख रहा, वो समझ रहा कोई नहीं समझ रहा हमें, आनंद सर्वज्ञ भगवान समझ रहे, और भी बहुत से लोग समझ रहे, हम जैसे लोग समझ रहे कि तुम्हारा कितना थोतापन है इसमें। वस्तु का स्वरूप क्या है उसे हम ख्याल तो करें, तो मतलब भूमिका क्या होनी चाहिए, तो उस सम्यक दृष्टि का जो जीवन है उसमें क्या कहां क्या मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाओं को कौन जानता, जानता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं, वो तो हे हो गया। अरे भाई कम से कम इसके लिए तो जानो कि हमें मालूम पड़े कि हम अपनी भूमिका के अनुसार हैं कि नहीं, जो भी भूमिका आप अपनी मानते हो। इतनी तो सब मानते ही है ना कि हम समय दृष्टि नहीं है, नहीं सही, लेकिन हमें समय से पैदा करना है, देह के छोड़ने के पहले एक दफे समय दर्शन प्राप्त हो जाए, इतनी तमन्ना तो है ना, इतनी तमन्ना तो है ना। तो उसके लिए कैसा जीवन हमारा, करुणानि योग के हिसाब से, चरणानि योग के हिसाब से, द्रव्यानि योग के हिसाब से, प्रथमानि योग के हिसाब से कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए तो जानो, और इस दृष्टि से उसे पढ़ो, उस दृष्टि से उसे देखो, और फिर उसमें घटित करो तो उसे पता चलेगा सारी परिस्थिति क्या है। अपने ये गाथाएं चलानी है ना, कितनी कौन सी है, 328, 329, 330 और 331। थोड़ा विषय बदला है, जो अपन ने कल तक कहा था ना उसे पढ़ो भी एकदम अच्छी तरह से, शांति से, सब लोग ध्यान से पढ़ देखना अपनी किताब में, समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि इतनी सरल भाषा में है कि आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिर मैं उस पर व्याख्या शुरू करूंगा। हाँ,
मिच्छत्तम जदि पयडी मिच्छा दिट्ठी करे दियप्पाणम सम्मा अचेदनाते पयडीलनुकार गो पत्तो अहवाये सो जीवो ओगल दव्वस कुणदि मिच्छत्तम सम्मा पोगल दव्वम मिच्छा दिट्ठीण पुण जीवो अह जीवो पयडीतः पोगल दव्वं कुणन्ति मिच्छत्तम सम्मा देहिं कदं तम दोर्णिविभुञ्जन्ति तत्सफलम् अहण पयडीण जीवो पोगल दव्वं करेदि मिच्छत्तम सम्मा पोगल दव्वम् मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को फिर तो अचेतन प्रकृति ही करतापने को प्राप्त हो। अथवा करे यह जीव पोदगल गर्व के मिथ्यात्व को मिथ्यात्व में पोदगल दर्व ही सिद्ध होगा जीवना यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्व मय उदगल करे फल भोग ना होगा उभय को उभय कृत मिथ्या यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्व मय उदगल दरव मिथ्यात्व मय उदगल सहज क्या नहीं यह मिथ्या कहो।
देखो कितना मारने ढंग है। ये प्रत्येक गाथा का की दूसरी पंक्ति का जो पहला शब्द है वो देखो तम्मा है। देखो चारों गाथाओं में है ना तम्मा। अरे तम्मा क्या है? तम्मा माने संस्कृत का तस्मात, और तस्मात माने इसलिए। ऐसा कहो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब वो बार बार ये कह रहे कि तुम्हें यदि ऐसा मानोगे तो फिर तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा। तो तम्मा माने तो तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा। और यदि यदि वो तम्मा, यदि वो तम्मा माने यदि ऐसा कहोगे तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा मानना पड़ेगा, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा मानना पड़ेगा। ए अब ये चार की अब कोई भी विकल्प खड़ा करो तो चार ही खड़े होते हैं, इसलिए चार गाथाएं हैं। कौन कौन से? कि अभी हम एक बच्चे से प्रश्न करें कि बेटा माँ की आज्ञा मानना चाहिए कि पिताजी की? क्या प्रश्न किया? मेरे भी सब पुराने उदाहरण हैं, किसी ने सुने होंगे किसी ने नहीं। माँ की आज्ञा मानना चाहिए कि पिताजी? यदि मैं जब से कह रहा हूं ये उदाहरण, जब मैं कहता था यदि वो कहे कि अम्मा की मानो, तो मैं कहता था कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में भी इंदिरा का राज है। हाँ ये कह रहा हूं मैं, इंदिरा गांधी के जमाने का उदाहरण है। मैं तब से मैं कहता आ रहा हूं इस उदाहरण को कि तुम्हें माँ का मानना चाहिए, तो कोई कह रहे हैं पिता का मानना चाहिए, तो अभी तक तुम पुरुष प्रधान बने हुए हो क्यों? तो तीसरे कौन होंगे कि दोनों का मानना चाहिए क्यों? तो ये सबसे बढ़िया कहने में अच्छा लगता है, लेकिन संभव कैसे है? बाप कहते स्कूल जा, माँ कहती सब्जी ला, अब दोनों एक साथ कैसे संभव है? मैंने कहने में बहुत अच्छा है लेकिन वो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। एक चौथे हो सकते हैं किसी की नहीं मान। अम्मा कहे कि क्यों नहीं लाया सब्जी? पापा ने कहा था स्कूल जा। पापा कहे क्यों नहीं गया स्कूल? गया। अम्मा ने कहा था सब्जी ला, तो सब्जी तो लाया होगा। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है आपकी। तो किसी की नहीं माने, चार ही उत्तर हो सकते ना, ऐसे ही हैं चार हैं। क्योंकि मिथ्यात्व तो दो तरह के हैं, एक पौधगल के मिथ्यात्व और एक जीव का मिथ्यात्व, एक भाव मिथ्यात्व एक द्रव्य मिथ्यात्व। अब ये कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि किया है जीव को, किसने किया? तो ये चार विकल्प उन्होंने खड़े किए और चारों के ऐसे उत्तर दिए। क्यों ये तम्मा तम्मा जो है ना, अब पहला देखो मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्व ही करे यदि जीव को, कि मिथ्यात्व नामक कर्मों की एक प्रकृति है 148 प्रकृतियों में, और उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, यानी उस मिथ्यात्व नामक प्रकृति ने जीव को मिथ्या दृष्टि किया, एक विकल्प समझिए ना। मिथ्यात्व नामक प्रकृति, अब देखो सांख्यों के यहां दो तत्व होते हैं मूलतः, एक पुरुष और एक प्रकृति, और प्रकृति के फिर 24 भेद होते हैं। तो अभी ये नैयायिकों से, नैयायिक माने जो न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ जैन विद्वान हैं, तो उनसे जाके कहोगे फटाफट एकदम कहेंगे सांख्य ऐसा मानते फलाने। अरे सांख्य को अपने घर में बैठन दो ना, यहां से कुछ सांख्य की बात नहीं है, यहां तो जो ज्ञानावरण आदि 148 प्रकृतियां हैं उसको प्रकृति कह रहे हैं, वो सांख्यों वाली प्रकृति नहीं है यहां। अरे अभी करुणा नियोग वाले आएंगे तो मिथ्यात्व करता है, उसके विद्रोह के बिना नहीं होता, न्यायशास्त्र वाले को प्रकृति करती है मिथ्यात्व। अरे भाई वो नहीं है, ये कहते हैं मिथ्यात्व नामक जो कर्म की प्रकृति है 148 प्रकृतियों में, यदि वो करे, इसका मतलब ये है यदि लगा यदि वो करे माने ये बात आचार्य को स्वीकार नहीं है कि वो करती है, यदि करे तो यदि वो करे ऐसा काय को लगाती, इसमें से ये ध्वनि निकल गई ना कि आचार्य मानने को तैयार नहीं है कि वो मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय हुआ इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हो गया। ऊपर की पंक्ति का अर्थ ख्याल में आया ना, मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्व करे यदि जीव को, कितना क्लियर है, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो, फिर तो वो मिथ्यात्व जो हमें हुआ है उसका कर्ता वो अचेतन जो प्रकृति है मिथ्यात्व नामक कारमान वगणा की, वो ही कर्ता हो गई, हो जाए ना, बहुत अच्छी बात है, हम हमारे मां से नहीं आई, बेटा दंड तो तुम भोग रहे, निबोध में तो तुम रहे, तो अभी कहेंगे कि तुम कह दो यदि ठीक है करे तो फिर उसको होना चाहिए, दंड उसको भोगना चाहिए, और ऐसा तो होता देखते नहीं, ऐसी ऐसी है। अभी समय हो गया, कल इन चार गाथाओं को अपन बहुत शांति से अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर अपन इसका अर्थ अच्छी तरह समझेंगे।